ಮಾಧವ ಕುಂಜಬಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ್ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ್ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧೇ ಜಯ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಜಯ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಜಯ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಜಯ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वाइन श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वाइन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथ की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज का प्रवचन हिंदी में होगा। टुडे इट्स संडे सो दैट्स व्हाई क्लास विल बी इन हिंदी। सो वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो चैप्टर 14 स्टोरी ऑफ किंग वेणा श्लोक 7 to 13। सो अभी हम सेवेंथ श्लोक पढ़ेंगे। वेनस्या वेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोकव्यसनम् कृपयो चुहुस्मसत्रिनः। वैनस्य वेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोकव्यसनम् कृपयोचः स्म सत्रिणः। वेनस्य वेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् ब्रह्मश्य लोकव्यसनम् कृपयोच्चुस्म सत्रिनः। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वेनस्य वेन को आवेक्ष देखकर मुनयः सभी मुनिगण दुर्वृतस्य दूत्र के विचेष्टितम् कार्यकलाप ब्रह्मश्य विचार करके लोक व्यसनम सामान्य लोगों के लिए संकट कृपया दयावश ऊचुहु कहा स्म भूतकाल में सत्रिणः यज्ञों के कर्ता ट्रांसलेशन सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तात्पर्य राजा वेन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत अनुत्तरदायी क्रूर तथा अत्याचारी है तो वे फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। यह समझ लेना चाहिए कि साधु सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण से विरत नहीं रहते। सामान्य कर्मी जन इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करते रहते हैं और ज्ञानी मुक्ति की इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं, किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पन्न भयावह वातावरण से उबरने हेतु मंत्रणा करने लगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम चौथे स्कंद के इस 14वें अध्याय में हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हम ये देख सकते हाँ मैत्रेय और विदुर संवाद चल रहा है, जहाँ पर विदुर जी ने मैत्रेय को कुछ प्रश्न पूछा। उस उत्तर में उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति का एक्चुअली तीसरे स्कंद में पहले उन्होंने स्वयंभू मनु ये सृष्टि कैसे निर्माण हुआ उन्होंने सब बताया, सृष्टि ब्रह्मा जी कैसे निर्माण करते, कैसे भगवान पहले प्राइमरी क्रिएशन जो भी सृष्टि निर्माण करने के लिए जो भी वस्तु है वो भगवान देते हैं, फिर ब्रह्मा जी उस वस्तुओं को लेकर इस एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक है वो तैयार करते हैं, फिर जीवात्माओं को अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से इच्छाओं के अनुसार उनको शरीर देते हैं, तो ये सब बताते हैं। तब उन्होंने पहले भगवान ब्रह्मा जी ने क्या निर्माण किया, तो उन्होंने उनके पुत्र के बारे में बताते, कहे चतुष कुमार को उन्होंने निर्माण किया, चतुष कुमार उन्होंने कुछ वो बोले कि मैं प्रजा उत्पन्न नहीं करूँगा, हमको ब्रह्मचारी रहना है, हमको भगवान का साक्षात्कार करना है, तो उन्होंने पहले ही मतलब ब्रह्मा जी का पहले ही संतानों ने उनका इंस्ट्रक्शन रिजेक्ट कर दिया। हाँ सोचे अगर किसी पिता को अगर अपने पुत्र को इंस्ट्रक्शन देते बच्चा है नहीं करूँगा बोल दिया तो कितना गुस्सा होएगा, अहंकार को कितना ठेस पहुँचेगा, मतलब पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता वही हैं सब क्रिएट निर्माण करने वाले, उनको पहले ही उनके बच्चे ने चतुष कुमार ने पहले बोल दिया नहीं करेंगे हम, बड़ा शौक था उनके लिए, तो उनको अहंकार को तो ठेस पहुंचा और क्रोध भी आ गया, क्रोध से उनके उनके जो आंखों के बीच में जो दो आईब्रोज के बीच में जो स्थान ये स्थान यहाँ से एक जीव निकले वो थे शिवजी रुद्र, तो सोचा एटलीस्ट रुद्र तो मेरा कार्य करेंगे प्रजा उत्पन्न करो बोले, पर रुद्र जी ने प्रजा ऐसे उत्पन्न किए कि वो तांडव मचाने लगे सब जगह चारों ओर, इवन ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए आ गए तो मतलब उन्होंने बोला बस हो गया बहुत हो गया प्रजा उत्पन्न करना, शांत रहो अब जाकर तपस्या करो, फिर वो जाकर तपस्या करने चले। फिर ब्रह्मा सोच रहे थे कि अरे मैं क्या करूँ, जो भी मैं प्रयत्न करने जा रहा हूँ इसमें तो मुझे सिर्फ निराशा ही मिल रही है, हम लोग सोच रहे कि हमारे जीवन में क्यों ऐसे हो रहा है, मैं जो भी सोच रहा हूँ सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, अरे हमारे तो छोड़ो ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जीवात्मा है उनके जीवन में पहले दिन से यही चल रहे हैं, पहले दिन से उनका कोई बात सुन नहीं रहे और पहले दिन से उनके जीवन में निराशा ही है, लेकिन उस निराशा में भी आशा की किरण है वो देखते हैं, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास होने के नाते उस निराशा में भी उन्होंने आशा की किरण देखी, वो सोचते अब मैं क्या करूं, उन्होंने तुरंत भगवान का शरण लिया। भगवान के भक्त ऐसे होते निराशा में हताश होकर बैठते नहीं है, चलो मेरे से कुछ नहीं होगा मैं फेलियर हूं मुझे मेरे से कुछ होगा नहीं अब मैं जाता हूं, हाँ कुछ लोग बहुत ही निराशा हो जो डिप्रेशन में चला जाए सुसाइड कर लेते, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला मेरा मुझे शरीर दिया है भगवान ने और मुझे उन्होंने कुछ सेवा भी दिया है उत्तरदायित्व भी दिया है तो मुझे वो निभाना है, तो क्या करूँ मैं, चलो मैं अभी भगवान का शरण लेता हूँ, अभी मैंने मेरे तरफ से प्रयास तो किया लेकिन फिर भी मैं इसमें असफल हूँ तो मैं क्या करूँ, चलो भगवान का शरण लेता हूँ, भगवान का शरण लिया, जैसे उन्होंने शरण लिया उनके मन से दो लोग जन्म लिए, वो कौन थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, तो ये दोनों ने जन्म लिया, तो तुरंत उन्होंने बोला हाँ आप लोग मेरे कार्य करो, इस भौतिक जगत पर इस ब्रह्मांड पर आप प्रजा उत्पन्न करो, तो स्वयंभू मनु ने यस सर जी हाँ मैं करता हूँ बोले, तो पहला व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्मा जी के लिए हाँ बोला, ब्रह्मा जी के उपदेश को हाँ मैं करता हूँ बोले, तो फिर उन्होंने बहुत खुश हो गए, चलो मेरा पहला बच्चा ऐसा हाँ बोल दिया, चलो आप करो जो आपको उत्पन्न प्रजा उत्पन्न, तो फिर वो गए वो बोले अरे मुझे तो भूमि दिखाई नहीं दे रहा आपने प्रजा उत्पन्न करो तो बोले, लेकिन भूमि तो दिखाई नहीं दे रहा, भूमि किधर चली गई, तो फिर ब्रह्मा जी मन लगाकर ध्यान करते हैं कहाँ चला गया, तब उनके नाक से एक जंतु निकलते वो है वराहदेव, वराहदेव बड़े होते और वो भूमि भूदेवी को एक्चुअली एक असुर हिरण्याक्ष गर्भोदक समुद्र के छुपाया होता है, फिर वो आकर भूमि देवी को बाहर निकालते हैं हिरण्याक्ष को वध करते हैं, तो ये ऐसा स्टोरी चलता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के कैसे तीन पुत्री थे और दो लड़के थे, दो पुत्र थे, हाँ प्रियव्रत और उत्तानुपात उनके दो पुत्र, प्रियव्रत महाराज जो थे वो बड़े ज्येष्ठ पुत्र और उत्तानुपात उनके छोटे भाई, फिर प्रसूति देवहूति और आकुति ऐसे तीन पुत्री थे। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को पहले देवहूति की कहानी सुनाते हैं, कैसे देवहूति और कर्दमन मुनि का विवाह होता है, से उनके विवाह के पश्चात फिर कैसे उनका उनको एक पुत्र स्वयं भगवान के अंश कपिल मुनि पैदा होते हैं और कपिल मुनि अपने माता को सांख्य योग भक्ति कैसे करना है सांख्य योग के माध्यम से वो सिखाते हैं। तो वो हमने तीसरे स्कंद में देखा। तो तीसरे स्कंद के बाद चौथे स्कंद में मैत्रेय मुनि विदुर जी को स्वयंभू मनु के वंशज के बारे में बोलना चालू करते हैं, आकृति के बारे में बताते हैं। आकृति के बारे में बताने के बाद फिर वो प्रसूति, तो प्रसूति और दक्षा इन दोनों का विवाह हुआ होता है। तो दक्षा और प्रसूति के पुत्री सती, उनका विवाह कैसे दक्ष शिवजी से होता है और कैसे दक्ष शिवजी के ऊपर द्वेष करते हैं और वो शिवजी का अपमान करते हैं, जो सती नहीं सहन करती और अपने आप को जला लेती है, ये सब विवरण करते हैं। तो तीन पुत्रियों के बारे में उन्होंने सब बता दिया। उसके बाद फिर वो ब्रह्मा जी ने कैसे अधर्म, कैसे उन्होंने अधर्म को निर्माण किया ये सब बताते, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अलग अलग अधर्म जो चीज़ें उन्होंने निर्माण की वो सब बहुत बताता है। बताने के बाद उनको तुरंत उनको बहुत ही घृणा आती है मैत्रेय जी को। मैत्रेय सोचते हैं, अरे मैं क्या बताया, इसमें तो कुछ रस ही नहीं है। तो मुझे भगवान के एक अच्छे बहुत ही ज्येष्ठ बड़े भक्त के बारे में बताना है। तो अभी उनको प्रियव्रत महाराज के बारे में बताना चाहिए था। एक्चुअली मैत्रेय मुनि को प्रियव्रत महाराज के बारे में, क्योंकि प्रियव्रत महाराज जो है जो ज्येष्ठ पुत्र है उनके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत उत्तानुपात के बारे में बताते हैं, उत्तानुपात राजा के बारे में। क्यों? क्योंकि उत्तानुपात के वंशज में ध्रुव महाराज आते हैं, तो उनको ध्रुव महाराज की भक्ति के बारे में बताना था। तो बहुत उत्सुक थे ध्रुव महाराज के बारे में बताना, कैसे उन्होंने इतने कम समय में भगवान को, भगवान के दर्शन की, भगवान को हासिल किया, और उन्होंने जो इच्छा की थी, मतलब उनको बहुत ब्रह्मा जी से भी बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, वो सब वो इच्छाएं त्याग कर भक्ति की आशा करते हैं। तो ये सब बताते हैं। तो ये बताने के बाद ध्रुव महाराज कैसे वो फिर अपने वैकुंठ लोक पधारते हैं, स्वयं वैकुंठ से विमान आता है उनको लेकर जाने के लिए, और वो अपने माता के बारे में चिंतन करते हैं, अरे मेरी माता की वजह से मुझे ये भक्ति मिला है, मुझे भगवान का दर्शन मिला है, तो मुझे उनको भी लेके जाना चाहिए। तो फिर माता को भी लेके जाते हैं। तो ये सब होने के बाद ध्रुव महाराज के वंशज में अंग महाराज के बारे में बताते हैं। अंग महाराज के बारे में बताते हुए बताते कि अंग महाराज को एक पुत्र होता है जिनका नाम वेणा है, जो और अंग महाराज बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर उनके जो पुत्र वेण है वो बहुत ही पापी और क्रूर अधर्मिक राजा है, ऐसे बताते हैं और आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो अचानक से हमारे विदुर जी उनको रोकते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े भक्त हैं अंग महाराज अंग, और उनके वंशज में ऐसा एक क्रूर एक आधार्मिक राजा कैसे आ सकता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो फिर वो बताते हैं कैसे अंग महाराज बहुत ही धार्मिक राजा थे और भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो यज्ञ में फिर वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि आप ऐसे यज्ञ कीजिए तो आपको भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कीजिए तो आपको कुछ भगवान का वरदान मिलेगा। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते तो उसमें से पायस निकलता है, पायसम खीर निकलता है, तो वो खीर वो अपने पत्नी को देते हैं, और उनकी पत्नी जो रहती है सुनीता, वो एक्चुअली मृत्यु की बेटी होती है, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वो मृत्यु की बेटी होने के नाते तो उनका जो बेटा होता है सुनीता और अंग का बेटा वेणा, वो अपने दादाजी के गुणों को स्वीकार करता है। दादाजी मृत्यु जो है वो अधर्म के अधर्मिक राजा है, मतलब वो अधर्म के क्या बोलते हैं मेंटेनर है। तो ये कैसे हो गया? तो जैसे बोलते हैं ऐसे ऐसे कहा गया है कि सुनीता जब वो बचपन में विवाह होने के पहले वो अपने सखियों के साथ वन में जाती थी खेलने के लिए, तो उस समय में वहाँ पर एक शशांक करके एक ऋषि होते थे, तो ऋषि को जाकर वो बहुत तंग करती थी, बार बार जाकर तंग करती थी, तो तंग करती थी, तो वो बहुत सहनशील थे, वो अपने तंग को अपने तप को भंग नहीं करना चाहते थे, वो क्या मतलब छोड़ देते थे, सहन करते हुए उसको, चलो छोटी लड़की है चलो छोड़ देते हो, लेकिन बार बार जैसे वो बार बार करते करते वो फिजिकल होने लगी, पीछे मारने लगी, ऐसे पीछे मारते ना, जब दब कर रहे पीछे मारने लगी वो, तो बहुत हो गया। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम इतने कठोर होकर एक साधु अपना तप कर रहा है उसका तुम तप भंग करने आए हो, तो इसे तुम्हारा पुत्र बहुत ही क्रूर और निष्ठुर रहेगा, ऐसे श्राप देते थे। इसीलिए सुनीता और अंगा का पुत्र वो वेण जो था बहुत ही क्रूर और अधार्मिक राजा निकला। और ये जो वेण राजा थे, सॉरी अंग राजा थे, वो अपने बेटे के जो ऐसा बताया गया, इसके पहले हम चर्चा किए थे कि वेण महाराज जो थे बचपन से ही वो बाहर जाते थे और शिकारी करने जाते थे, और शिकार करते हुए निष्पाप पशुओं को वध करते थे, और अपने मित्रों के साथ जब वो खेलते थे तो मित्रों को मार डालते थे वो। अभी कौन क्या बोलेगा, राजा का पुत्र, किसको कंप्लेंट करेंगे राजा का पुत्र ऐसे है। तो अंग महाराज बहुत प्रयास करते हैं अपने बेटे को सुधारने के लिए, लेकिन सुधरता ही नहीं है। तो अंग महाराज का साक्षात्कार देखिए, वो सोचते हैं भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया है, ताकि मैं भौतिक जगत से विरक्त हो जाऊं। तो ये भक्तों का एक ये गुण है कि वो बुरे चीज में अच्छा चीज देखते हैं। तो उन्होंने देखा भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया है ताकि मैं ये भौतिक जगत, अगर मुझे अच्छा बेटा देते थे भगवान, तो मैं शायद आसक्त हो जाता उस बच्चे से, और मैं फिर ये राज्य संभालने में और मेरा इन्वेस्ट एनर्जी, मेरा टाइम, सब सब कुछ मैं डाल देता। तो भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया ताकि मैं इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाऊं, वैराग्य में धारण कर लूं। तो ऐसे सोचते हुए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और अचानक एक दिन किसी को बोले बिना वो वन की ओर वानप्रस्थ ले लेते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं। तो ऐसे अंग महाराज चले जाते हैं। तो अभी क्या करें, जब कोई राजा नहीं होता, कोई शासन नहीं होता, तो क्या होता है, चोर गुंडे ये सब बाहर निकलने लगते हैं। तो उस राज्य में बहुत सारे चोर गुंडे ये सब तंग करने लगे, प्रजाओं को तंग करने लगे। तो अभी वहां के जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनिगण थे, तो लोग सोचने लगे अभी क्या करना चाहिए। जब तक अंग महाराज थे इन्होंने रक्षा किया, अभी अंग महाराज चले गए तो अभी कौन कौन सिंहासन पर बैठेगा, कौन इन सब प्रजाओं की रक्षा करेगा। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, और जो अधर्मिक लोग हैं उनको नियंत्रण में रखना, तो ये कौन करेगा। तो सोचते हैं अभी दूसरा उपाय नहीं है, वेन को ही एक चांस देना पड़ेगा। हाँ चलो एक चांस दे देते वेन को, राजा वेन को एक चांस दे देते, वो शायद हो। तो उसको माता से, उनकी माता से पूछते, सुनीता से, ऐसे हम लोग सोच रहे करे क्या। तो माता तो बोलती बोलेगी हाँ, तो उन्होंने बोल दिया हाँ कर लो। तो उन्होंने वेन को सिंहासन पर बिठा दिया। बिठाते समय उसको बताया कि उपदेश दिया, राजा का धर्म क्या है, वो कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसे रक्षा करनी चाहिए, सब बताते वो सब कुछ। जब सिंहासन मिलने तक हाँ हाँ अपना सिर हिलाता है, सब ले लेता है। और ऊपर बैठने के बाद उसके ऊपर जो ये ऐश्वर्य का जो भूत सवार हो जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है वो। वैसे भी वो क्रूर ही था, और क्रूर बन जाता है और शक्तिशाली। जब जैसे ही महाराज वेण सिंहासन पर बैठ जाते हैं, सब चोर गुंडे अधार्मिक लोग जो है सब जाके छुप जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है नंबर वन गुंडा तो वेना ही है, बाकी तो ये लोग तो छोटे मोटे थे, सबसे बड़ा था, इसको इसके ऊपर कौन हो सकता है। तो इसीलिए सब लोग जाके छुप जाते हैं। तो लोग सोचते चलो अच्छा है, गुंडे सब एटलीस्ट अभी कुछ तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन ये राजा वेण ये खुद ऐसा कार्य करने लगा, वो सब प्रकार के धार्मिक कार्यों को बंद करने लगा, दान धर्म ये सब बंद करने लगा। तो इसी यहाँ पर इसलिए तो वो इसके पहले श्लोक में कल तक हमने देखा कि जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं ना बाहर, जब कुछ ऐलान करना होता है तो ऐसा अनाउंसमेंट होता है बाहर आकर, महाराज का जो अनाउंसमेंट कुछ करना रहता है तो बाहर जाकर, जैसे हमारे सुबह इधर अनाउंसमेंट होता है आज का कार्यक्रम ये है, आज इन्होंने ये दिया वो दिया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट, अनाउंसमेंट सुबह मॉर्निंग अनाउंसमेंट होता है। उसी प्रकार जब महाराज कुछ राजा कुछ एक प्रकार का घोषणा करते हैं, तो घोषणा पूरा राज्य में फैलना चाहिए। तो ढिंडोरा पीटते हुए सब लोग जाके बोलते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट होता है, आज से कोई ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी किसी प्रकार का दान धर्म नहीं करेगा, कोई मंदिर में जाके पूजा नहीं करेगा, कोई भी जाकर तपस्या नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा। तो बोले ये कैसे हो गया? क्योंकि वो बोलते हैं मैं राजा हूं, तो आपको दान धर्म करना है मुझे आके दान करो, आपको पूजा करना है मेरी पूजा करो, यज्ञ करना है मेरी संतुष्टि के लिए यज्ञ करो। ऐसे कर कर वो बोलने लगा। तो ब्राह्मण लोग देखते हैं, साधु संत ऋषि मुनिगण देखते हैं, अरे ये क्या हो गया? हमने तो इसको बिठाया ताकि हम लोग को यज्ञ करने का मौका मिले, हाँ सब लोग दान धर्म धार्मिक कार्य कर सके, पर ये तो खुद राज्य सिंहासन बैठकर हम लोग को धार्मिक कार्य करने नहीं दे रहे, अधर्मिक कार्य को प्रोपोगेट कर रहे। तो ऐसे सोचकर तो ये सब ऋषिगण, आज के श्लोक में यही बोले, सब ऋषिगण एकत्र हुए और वे इनके अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। तो बोलो भविष्य देखते हैं, ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, कलयुग जल्दी आ जाएगा। क्योंकि ये कलयुग का पूरा प्रकोप पहले दिन से दिखा रहा है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। सो यज्ञ करना क्यों जरूरी है? तो भगवान भी कहते हैं ना, भगवद गीता में भी कहते हैं कि सब धर्मों को मतलब अपना अपना यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपना यज्ञ स्वाध्याय, हाँ वानर गृहस्थों का दान देना, तो ऐसे सबका अपना अपना यज्ञ है, तो यज्ञ सबको करना चाहिए। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस शब्द ही ऐसा है कि कुछ अपना कंफर्ट्स त्यागे, अपना कुछ सुविधा है उसको त्यागे, वही वही यज्ञ है। तो भगवान बोलते हैं यज्ञ करना चाहिए, क्यों? क्यों यज्ञ करेंगे तो लोगों का मंगल होगा। एक व्यक्ति यज्ञ करने से बाकी लोगों को मंगल कार्य कर सकता है वो, जैसे हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं हर दिन सुबह, तो यज्ञ करने से यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। एक व्यक्ति आके बोल रहा था कि हम सिर्फ यहाँ पर आए सिर्फ यज्ञ देखने के लिए, वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आया, बोले से हम यज्ञ यज्ञ देखने के लिए, हमने सुना कि यहाँ पर यज्ञ होता है तो यज्ञ देखने के लिए आए। तो मतलब और हम यज्ञ में क्या करते हैं, यज्ञ करने के बाद अंत में हरे कृष्ण मामा तो बोलते ही है। तो मतलब किसी ना प्रकार भगवान से जुड़ जाए, उनके जीवन में कुछ मंगल कार्य हो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आदो श्रद्धा, मतलब क्या, कोई भी अप्रिशिएट करे, कोई भी छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करे। जो बोलेगा चलो मैं मंदिर जाता हूँ, चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कुछ तो मिलेगा, मतलब भगवान के दर्शन कैसे होते, यज्ञ देखने मिलेगा, या भागवतम होता है तो वो सुनने मिलेगा कुछ तो, या भक्तों को देखने मिलेगा। तो ये जो ये श्रद्धा है, आदो श्रद्धा, यहाँ से जो अप्रिशिएट करते हैं ना, द पॉइंट जिस क्षण से वो लोग अप्रिशिएट करते, द्वेष नहीं करते, निंदा नहीं करते, उस क्षण से उनका श्रद्धा चालू हो गया, उस क्षण से उसका फिर वो भक्ति चालू हो जाता है। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए तो ऐसे यज्ञ करना जरूरी है। इवन शौनकादि ऋषि पहले स्कंद में क्या बताया, हाँ शौनकादि ऋषि कल हजारों वर्ष के यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए, लोक मंगल, कलयुग के जन लोगों के लिए मंगल कार्य होने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में सूत महर्षि को बिठाकर वो प्रश्न पूछ रहे कि कैसे, छह प्रश्न पूछते हमको पता है। तो सूत गोस्वामी इतने संतुष्ट हो जाते, बोलते मुनय साधु पृष्ठ भवद्भिर् लोक मंगलम यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। तो आपके प्रश्न जो है ये सब लोक मंगल कार्य के लिए है। तो मतलब इतने हजारों वर्ष के यज्ञ कर रहे हो, बोल रहे कि हम ये यज्ञ के जो काले धुए हैं वो धुओं का हम पूरा हमारे ऊपर ले रहे, किस लिए ले रहे, इतना कष्ट क्यों ले रहे, लोगों के मंगल कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे इवन आठवें स्कंड में भी ऐसे आता है कि साधु पुरुष जो रहते हैं वो हमेशा लोगों के मंगल के लिए ही अपना जीवन चलाते हैं। जैसे आठवें स्कंद में शिव जी के बारे में बताया कि तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रयशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। तो वो खुद को असुविधा देने के लिए तैयार रहते हैं, पर दूसरों को सुविधा देने के लिए, दूसरों को सुख देखने के लिए। इवन वासुदेव घोष के बारे में भी बताया, वो कैसे चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे, ये सब लोग को आप मुक्ति दे दो, ये कलयुग के जितने भी लोग हैं सबको मुक्ति दे दो, और उनके जो जितने भी पाप हैं वो मुझे दे दो। तो ऐसे, तो मतलब ये साधुओं का एक नेचर है, स्वभाव है। तो यहाँ पर भी ये ब्राह्मण लोग, साधु लोग सोच रहे कि अरे ये यहाँ पे क्योंकि साधु लोग अभी अभी अगर कोई राजा आकर ऐसा कुछ अत्याचार कर रहा है, अधार्मिक चीजें प्रचार कर रहा है, तो साधु छोड़कर जाकर हिमालय में जाकर बैठ सकते हैं तप करने के लिए, उनको कुछ लेना देना नहीं है, चलो जाता हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर साधुओं को मार रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे वो कर रहे, चलो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं पर जंगल में, जंगल में तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर उनको बाधाएं आ रही, वहां पर तो बाधा नहीं देंगे, जंगल में जाता हूँ मैं, अपना छोटा सा एक मिट्टी का मूर्ति बना के वहां पर मैं पूजा करता हूँ, ऐसे कर सकते, लेकिन वो नहीं करते। बोलते हैं कि भले ही मुझे तकलीफ आए लेकिन मैं लोगों को दुखी देखता हुआ मैं सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे सोचकर वो लोग, तो इवन शिव जी ने क्या किया, जब वो हलाहल विष निकला तो उन्होंने तुरंत उस विष को अपने आप उन्होंने पान कर लिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, देवी देवताओं को और असुरों को तकलीफ ना हो। तो पैसे, तो ये साधुओं का ये लक्षण है। तो जन कल्याण के लिए वो, तो आप देखें कर्मयोगी लोग, कर्मयोगी क्या करते हैं, वो इंद्र तृप्ति के कर्मकांडी लोग एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करते हैं और अपने इंद्र तृप्ति के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग मुक्ति के हेतु के लिए करते हैं, मतलब सबका अपना अपना एक एक गोल है, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, हाँ, या साधु संत लोग क्या करते हैं, उनका सिर्फ एक ही हेतु है, हाँ, पर दुख का दुखी, दूसरों के दुख को देकर वो सहन नहीं कर सकते, तो उनको कैसे, बाकी लोगों को सुख कैसे दिया जाए, उसके लिए वो प्रचार हेतु, हाँ, इधर उधर जाते तकलीफ उठाते हैं, जाकर प्रचार करते हैं, दूर दूर जाते हैं भले ही उनको तकलीफ हो, हाँ। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही, उन्होंने अपने जीवन में इतना, उनको 70 उम्र में उन्होंने सात समंदर पार करके गए और जाकर ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो खुद के तकलीफ, खुद को तकलीफ, उनको उनको इतना हार्ट अटैक आया, उनको लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये सब को क्रॉस करते हुए उन्होंने ये सब भक्ति का प्रचार किया लोगों के हित के लिए। तो क्यों किया उन्होंने, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल विंग चालू कर सकते थे, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, जैसे गांधी जी ने एक मूवमेंट चालू किया, या फिर आरएसएस का एक विभाग चालू हुआ, मतलब ये सब किसके लिए, कुछ एक लोग, मतलब उनके पास कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, पर टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उनको पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू दिया दूसरों के दुख को शमन करने के लिए। ये सब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बाकी जो ये है संस्थाओं ने किया है, उनके पास स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, बट इट इज़ नॉट टॉप मोस्ट, वो सबसे श्रेयकर नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया, वो हम अंत में देखेंगे, प्रभुपाद जी को तो अपने तात्पर्य में लिखते हो, अंत में देखेंगे। तो ऐसे उन्होंने बताया, तो ऐसे साधु लोग अपने, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद 8वें श्लोक में कहते हैं, अहो उभयत प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत् दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्टे की दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। यहाँ प्रभुपाद जी मतलब यहाँ पर ऐसा उदाहरण दिया है, हाँ मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि अगर आग के दोनों छोर पर अग्नि जलाया जाए और बीच में चींटियाँ हैं तो चींटियाँ किधर भागेगी, दोनों ओर से उनका कुछ उपाय नहीं है, मतलब मरना ही उनका पास एक उपाय है। तो उसी प्रकार अगर चोर उचक के रहेंगे तो जनता किधर जाएगी, राजा के पास, पुलिस के पास, अगर पुलिस ही नंबर वन उचक का निकला तो क्या होगा, तो किसके पास जाएंगे। आजकल के कलयुग में ऐसा ही दर्शा है, किसके पास जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मीडिया में इधर उधर डालेंगे, पर मीडिया में भी कौन क्या करे, कुछ नहीं होता, फिर बाद में एक दिन के बाद शांत हो जाते हैं, टाइम
टाइम का, काल का प्रभाव ऐसा है कि कुछ समय चिल्लाते रहेंगे, सबको मालूम है, चिल्लाते रहो, कुछ समय के बाद शांत हो जाएंगे, कितने चिल्लाएंगे। तो उसी प्रकार से आजकल की दुनिया में सब ऐसे हो रहा है, क्योंकि कोई नहीं है प्रोटेक्शन, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर एक्शन उठाने वाला नहीं है, इसलिए चिल्लाते रहो, एक दिन शांत हो जाओगे, सबको मालूम है ये सीक्रेट। तो इसलिए सब चुप शांत बैठते हैं, हाँ क्या करो, चिल्लाते रहो, हाँ ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं आजकल के दुनिया में। तो यही यही बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे अवस्था में क्या करेगा बेचारा जनता जनार्दन, क्या करेगा, क्या हमारे हाथ में क्या है। आप कोई बोलेगा मैं करता हूँ, तो एक आदमी उठेगा जाएगा कुछ करने जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो देखेगा आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखेगा 10 लोग थे, बाद में धीरे धीरे कम होते एक भी नहीं, वो अकेला आदमी आगे खड़ा है। तो ऐसे ही दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए कुछ मतलब देर इज नो, जैसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सबको अपना अपना जहाज चलाना है, हाँ अपना अपना जहाज से ही हमको आगे जाना है। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत में कोई किसी का नहीं है, सब अपने 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 जीवन चलाना है। कोई आता है तो अपना कुछ हेतु लेकर आता है, बिना हेतु का कोई आने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। हम कलयुग के बारे में तो 12वें स्कंद में तो इतना बताया गया है कि कोई किसी का नहीं रहेगा, हाँ इवन माता पिता भी कोई बच्चे का कोई संबंध नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को कैसे निचोड़ेंगे, तू मेरा पीछे खरोचेगा मैं तुम्हारा खरोचता हूँ, उसे वो उस तुम मेरे पीछे खरोचेगे उसके बाद मैं खरोचूंगा भी नहीं। क्या करूँगा पता नहीं, खंजर खंजर घोप दूंगा, ऐसे होगा। तो ऐसे दुनिया ऐसा इस ओर बढ़ रहा है, कोई किसी का नहीं, थोड़ा सा कुछ अनबन हो गया खत्म, संबंध उड़ी टूट जाता है। इवन भक्तों के समुदाय में भी हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को सोचेंगे कि हाँ ये भक्त है, ये है, अच्छा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, चलो ये मेरा सपोर्ट करेगा, वो मेरा सपोर्ट करेगा, नहीं। जैसे ही कुछ अहंकार को ठेस पहुंचेगा, जैसे गौरव प्रभु बोलते थे हारमोनियम में सब हारमोनियम का बटन अच्छा चल रहा है तो तब तक ठीक है, एक बटन अगर पैं करके आवाज करेगा तो खत्म, वो ट्यून ही पूरा खराब हो जाता है। उसी प्रकार सब अच्छा चलता रहेगा एक दूसरे के साथ, हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है, हाँ ये मेरा सुनता है, मैं जब तक बोलता हूँ ये मेरा सुनता है, सुनते रहेंगे। लेकिन अचानक से हम उसके अहंकार को ठेस पहुंचाएंगे तो गया खत्म, तो पीछे मुड़ के देखेगा भी नहीं कुछ होगा तो। तो मतलब इतना तो नहीं है भक्तों के समुदाय में, इतना कठोर तो नहीं है, बट एटलीस्ट क्या होता है कि वो फिर इनडिफरेंस हो जाएगा, इनडिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार के हम, क्योंकि ये दोष नहीं है उस जीवात्मा का, ये दोष है इस कलयुग का। कलयुग ही ऐसा बना है कि एक दूसरे से हमको द्वेष करना है, कोई एज ऑफ क्वारलसम, एक दूसरे से हम द्वेष करेंगे, युद्ध करेंगे, जमेगा नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसीलिए हम इस परिस्थिति में कुछ दूसरे किसी को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ हमारे कर्मों को हमको दोष देना है, हम क्यों इस कलयुग में आए, या हमारा दोष है कि हम हमारा कर्म तो हम कलयुग में आए। तो इस प्रकार से हम हमें ऐसा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है प्रभुपाद जी, ऐसे नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम है, दोनों साइड पे अगर आग जला हुआ है तो बीच में चींटियां तो क्या करेगी, वो मरना है उसके पास उपाय। तो उसी प्रकार हमारे पास भी ना कोई है ऊपर में जो हमारी रक्षा कर सके, और ये बाजू में अत्याचार के अत्याचार वो चल रहा है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बस बैठते देखते रहो, एक तरफ से देखा जाए देखते रहो, बस वही है। लेकिन प्रभुपाद जी सोल्यूशन बताएंगे, वो मैं बाद में अंतिम में बताऊंगा मैं। तो प्रभुपाद अगले श्लोक में मैत्री जी बताते हैं, अराचक व्यादेश अराजक, हिंदी में पढ़ना थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं इंग्लिश निकालता हूँ। अराजक भयादेश कृतो राजा तत् अर्हण ततोप्यासीत भयम त्वद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम। ऋषियों ने सोचा कि राज्य को अराजकता से बचाने हेतु राजनीतिक संकट के कारण वेण को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था, किंतु दुर्भाग्य अब तो जनता राजा द्वारा ही पीड़ित हो रही है, ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा राजा कोई नहीं तो चोर उचक के आ जाएंगे, चलो वेण को, मतलब बोलते ना नहीं मामा से अंधा मामा ठीक है करके, उसी प्रकार कोई राजा नहीं तो चलो कोई तो राजा को बिठा देते तो एटलीस्ट हमारे राज्य को संभालेगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो उसको राज्य में आने के बाद पोजिशन लेने के बाद मे भी उसका बुद्धि बदल जाएगा, ऐसे सोच के उन्होंने सोचा डाल देते हैं। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी सोचते हैं ना, अरे बच्चा अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई बच्चे लोग घूमते रहते हैं, कुछ कार्य करते नहीं, घर का काम कुछ संभालते नहीं, कुछ नहीं, बट जैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो मैं भी वो सुधर जाएगा थोड़ा रेस्पॉन्स। जैसे कोई घर पे लड़का होता है तो उसके पास पैसा वैल्यू नहीं होता है, पैसे उड़ाते रहते हैं, तो पिताजी क्या बोलते हैं, जा थोड़ा काम कर, नौकरी कर, तुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, खुद काम कर, खुद खड़ा हो, तब समझ में आएगा। तो जब जाके नौकरी करेगा, पैसे कमाना चालू करेगा, तब उसको समझ में आएगा क्या वैल्यू है, तो देख देख कर पैसा खर्च करेगा, है कि नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आते, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो अपने आप वो सुधरता है। उसी प्रकार कोई लड़की, जैसे मेरे घर के, मेरी बहन के बारे में बताया मुझे, मेरी बहन को कभी घर पे वो कुकिंग नहीं करती थी, माँ बोलेगी चलो ये कर वो कर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाके बैठती थी आराम से, काम नहीं करने का तो ऐसी रहती थी। जब उसको शादी होके घर पे जाना पड़ा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था बनाने तो उधर उसकी मदर इन लॉ ने उसको ट्रेनिंग किया, ऐसे बनाओ करके, और अभी यूट्यूब में देखकर नए नए रेसिपी बनाती और फोटो भेजती रहती है, मैंने ये बनाया वो बनाया करके तो हम सोचते हैं अरे कैसे इतना सब बनाती है। तो मतलब क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप सुधर जाते हैं, बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद भी नहीं सुधरते। मतलब बोलते हैं ना, कुत्ते का पूछ कभी टेढ़ा कर ही नहीं सकते सीधा सीधा नहीं कर सकते, सॉरी तो वैसे टेढ़ा भी नहीं कर सकते, क्या टेढ़ा क्या करेंगे, टेढ़ा ही रहते हो तो उसी प्रकार ये वेणा इस प्रकार का एक जीवात्मा था, वो उसको इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन राजा बनाया गया, फिर भी वो सुधरा नहीं। वो और उस राजा के पोजीशन में जाने के बाद, उत्तरदायित्व लेने के बाद, वो और बिगड़ गया, उसका उसका दिमाग और घूम गया, क्योंकि पोजीशन से वो इतना मदमस्त हो गया कि वो सोच रहा था कि मैं ही अभी सब कुछ हूँ। तो ऐसे सोचकर वो बहुत ये अराजकता अराजकता करने लगा। अराजकता शायद ही हम लोगों ने कभी सुना रहेगा पहले, हिंदी में मुझे पता नहीं अराजकता क्या है, लेकिन हमारे तमिल भाषा में अराजकम अराजकम बहुत सुना है हम लोगों ने तो ये जब वर्ड को हमने सुना तो इमिडिएटली समझ में आ गया, हाँ इसका मतलब गलत कार्य। तो ये अराजकता जो है ये इसको, तो इसलिए राजा पीड़ित तो क्या किसके पास जाएंगे, प्रजा किसके पास जाएंगे, राजा अगर ऐसा अराजक रहेगा तो इसलिए वो लोग सोचे कि अभी हमें कुछ करना चाहिए। तो अभी अगले श्लोक में बताते हैं, तो मतलब वो राजा होने का उसको उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था, फिर भी उसको दूसरा कुछ उपाय नहीं है करके उसको राजा बनाया गया, और उसका अभी क्या बोलते हैं, दुर्भाग्यवश अभी प्रजाओं को उसका भोगना पड़ा। तो अभी यहां पर वो लोग मैत्रेय ऋषि एक उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे इस राजा को उन्होंने एक चांस दिया, कैसे उन्होंने गलती का एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। अहेरिव पय पोष पोषकस्यापि नर्तभृत् वेण प्रकृत्यैव कलह सुनिता गर्भ संभव। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर सांप को पाल पोस कर दूध दिया जाए, सांप के बिल में अरे सांप है बहुत अच्छा है, चलो इसको हम दूध देते हैं, दूध देंगे, थोड़ा शक्कर देंगे, ऐसे उसके पाल पाल पोसेंगे, तो इसका मतलब क्या, वो सांप कुछ काटेगा नहीं, अपना विष नहीं दिखाएगा, विष तो दिखाएगा ही, हाँ वो सीधा कभी उसको चांस मिलेगा, उसको कुछ हो गया तो सीधा काट देगा वो। जैसे मैंने एक स्टोरी सुना था, एक कुत्ता था मतलब उसका वो क्या बोलते हैं, वो बुल टेरियर करके एक ब्रीड है कुत्ते का, बहुत ही भयानक खतरनाक ब्रीड है वो। हाँ, तो वो ब्रीड को जनरली लोग रखते हैं, मतलब वो इतना खूंखार है कि वो सीधा मालिक के सिवा और किसी को छोड़ता नहीं है वो। तो उस कुत्ते को जनरली कोई पालता नहीं है, बहुत सोच समझ कर लोग पालते हैं। तो एक व्यक्ति ने उस कुत्ते को पाल रहा था और वो उसके मालिक के साथ तो बहुत शांत से व्यवहार कर रहा, सब कुछ अच्छा था। तो उसका बेटी का शादी हुआ, शादी होने के बाद वो गए, वो लोग सब मायके चली गई वो। फिर एक दिन लड़का और लड़की दोनों घर पे आए, मतलब दामाद और बेटी दोनों घर पर आए, और वो लोग घर पे रह रहे थे। तो कुत्ता तो क्या है, रात को वो लोग खुला छोड़ देते, दिन भर बांधा रहता है, रात को खुला छोड़ दिया कुत्ते को। और ये बेचारा दामाद, उसको मालूम नहीं था रात को खुला छोड़ दे, तो ये रात को गया नेचर्स कॉल अटेंड करने बाहर, और अगले दिन सुबह उठ के देखा दामाद नहीं दिख रहा है। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते गए, वो आदमी का आधा बॉडी नहीं था, कुत्ते ने खा लिया था। तो मतलब सोचो, जिस कुत्ते को इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही कुत्ता उनके घर के दामाद का विनाश का कार्य बन गया। तो क्या है मतलब, यही है कि किसको पालना चाहिए किसको नहीं पालना चाहिए, वो दिमाग में रख के शास्त्र में ऐसे ही नहीं बताया है कि किसको पालो किसको नहीं पालो। शास्त्र कुछ कहता है तो वो सोच समझ कर कहता है। उसी प्रकार ये जो वेणा राजा था, इतना क्रूर अधर्मिक था, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था करके उसको पोजिशन में दिया गया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसका एडवांटेज उठा ले। अभी वो ही आकर इन लोगों को, इन लोग क्या वो बोल रहा था, अगर कोई भी इस राज्य में यज्ञ करेगा तप करेगा मेरे अलावा विष्णु की पूजा करेगा उसको मौत के घाट उठा दो। तो मतलब देखो, जिन्होंने उसको गद्दी दी उसी का वध करने के लिए ये तैयार है। तो मतलब क्या है, इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, अभी उसी का वध करने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये सांप को पालने की तरह है, दूध पिलाकर ले बाबा थोड़ा थोड़ा दूध पी, फिर आएगा डस लेगा, खत्म कहानी। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये उदाहरण दे रहे मैत्रेय मुनि की, ये सांप के बराबर इसको पालना जैसा हो गया है, ऐसे वो लोग सोचने लगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सरपेंट हु इज मेंटेन्ड विथ मिल्क एंड बनानास सिंपली स्टोर्स पॉइजन इन हिज टीथ एंड अवेज द डे टू बाइट इट्स मास्टर। बनाना मतलब केला और दूध, सांप को केला भी खिलाते हैं, मुझे मालूम नहीं था, पहली बार मैं सुना, दूध और केला सांप को खिलाते हैं, और वो विष जमा करता है ताकि जब टाइम आएगा डस देगा वो। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे कर रहे, और फिर बताते हैं अगले श्लोक में, 11वें श्लोक में बताते हैं, निरूपित प्रजापाल स जिगांशति वै प्रजा तथापि सांतव्ये मामुं नाशमांस्तत्पातकं स्पृशेत। तो यहां पर बताया गया, हमने इस वेण को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करे, ऐसा करने से हमें उसके पाप का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, हमें उसके पाप का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। मतलब देखिए, अभी वेण को राजा तो बना दिया, अब वो अधर्मिक कार्य कर रहा है, अभी उसके पाप के कर्मों का फल सिर्फ वेण को ही नहीं लगेगा, इवन ये ब्राह्मणों को, ये ऋषियों को भी लगेगा। क्यों? इन्होंने चुना ना, इन्होंने उसको उस पोजीशन पर बिठाया। तो इसीलिए वो सोच रहे, अरे बाबा अगर ये ऐसे ही कार्य करता रहेगा, उसको तो पाप कर्म तो लगने वाला ही है, हमें भी लग जाएगा, तो हमें तो बहुत इसको कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब राजा नहीं था तब चोर उचक्कों ने बहुत हल्ला हुल कर दिया था उधर राज्य में, तो इसीलिए वेण को बिठाया। अब वेण ही अधर्मिक कार्य कर रहा है तो अभी क्या करे? तो उन्होंने सोचा, चलो अभी इसके लिए भी हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें भी पाप कार्य। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते ना, पाप कार्य डायरेक्टली करने से ही उसको पाप कार्य रहेगा, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है, उसके संपर्क में जो कोई भी है, सबको लगता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो बोलेगा मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तो सिर्फ खा रहा हूं। नहीं, खा रहा है मतलब यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ किलिंग एन इनोसेंट। जो एक निर्दोष पशु है उसकी हत्या में तुम भी शामिल हो रहे हो, क्योंकि तुमने पैसा देकर खरीदा है, तुम एंकरेज कर रहे हो। तो उसी प्रकार हम बोलेंगे कि मतलब बहुत हेवी हो सकता है, जैसे गोमाता का रक्षा कर रहे, एक तरफ से गोमाता का रक्षा कर रहे और दूसरे ओर से आकर जहाँ पर गोमाता को मारा जाता है वहाँ से दूध खरीद रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम हिंसा वाला दूध पी रहे। तो मतलब वी आर ऑल्सो पार्ट, हम भी उस पार्ट, उस गो हत्या का भाग ले रहे, क्योंकि उसको जो गोपालर, वो जो गो दूध, वो क्या किसके लिए गाय रख रहा है, गाय रख रहे सिर्फ दूध के लिए, गो माता को रक्षा करने के लिए नहीं, सिर्फ दूध के लिए, जब दूध नहीं देती गाय को कतल खाने में भेज देगा। तो इस प्रकार से केवल जो वो कत्ल खाने में गाय को काट रहा है या पशु को काट रहा है वही पाप कर्मों का फल भुगतेगा, ऐसा नहीं। जो उसको सपोर्ट सिस्टम, उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम है, हाँ, जो भी उसको सहायता कर रहे हो उसके, क्योंकि अगर कोई दूध ही नहीं खरीदेगा इस प्रकार का दूध तो फिर कत्ल खाने में क्यों घाटेंगे गाय को। तो फिर ऐसे मतलब इस प्रकार का ये चेन रिएक्शन है। तो इसीलिए ये ब्राह्मणों सोच रहे हैं, अरे हम तो ये राजा को सिर्फ राजगति में बैठा, पर वही धर्म अधर्मिक कार्य कर रहा है तो हमें तो नहीं लगेगा अधर्म, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो क्योंकि देखो शास्त्र में ज्ञान, अगर ज्ञान मिलने से हमको, सही ज्ञान मिलने से हमको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इवन ये ब्राह्मण लोग को पता था कि अगर हमने इसको बिताया है तो इस राजगति से उतारना भी हमारा एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई नहीं है। वेण राजा सबसे टॉप मोस्ट था, और राजा क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मणों का पालन करना, और ये तो ब्राह्मणों का पालन ही नहीं कर रहा था, तो अभी क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि हमें कुछ तो इसको सद्बुद्धि देंगे, जाकर इसको जाकर बताएंगे, सिखाएंगे क्या करना चाहिए करके, इसको बताएंगे। ऐसे सोचकर इनके पास शक्ति था उसको तुरंत मारने का, वो हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण से हुम हुम बोला और उसको भस्म कर दिया। कोई कर सकता है क्या? हर दिन सुबह हम लोग मंदिर में जाकर भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते समय हुम बोलते हैं, हम बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं मंत्र, लेकिन कोई मंत्र से कुछ इफेक्ट नहीं होता है, होता रहेगा सूक्ष्म रूप से, पर स्थूल रूप से हम देख नहीं पाते। लेकिन उस समय के ब्राह्मणों में इतना शक्ति था, हुम बोला और वेण उधर ही भस्म हो गया, मतलब मर गया, भस्म हो गया मतलब मर गया वो। तो इस प्रकार की शक्ति थी, वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, एक और चांस इस वेण महाराज को हम देंगे, ऐसे सोचकर उन्होंने बोला कि चलो हम इनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करने से, क्योंकि उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो ऐसा होगा कि चलो हमने हमारे तरफ से प्रयत्न तो किया, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमें जाके उनको समझाना चाहिए, ऐसा नहीं तो करने दो, मेरा मेरा क्या जाता है, मैं अंधे का करके चले जाता हूं। तो ऐसे करने से भी हमको पाप, किसी ने कहा, किसी ने कहा ये जन्म में हम चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहन रहा हूं, तो चश्मा पहनने का कारण क्या है, किसी जन्म में हमने किसी को अंधे का देखकर भी अंधे का करके हुए चले गए, तो इसीलिए भगवान ने हमको अगले जन्म में चश्मा दे दिया। तो ये कर्मा कार्मिक रिएक्शन ऐसे आता है, तो हमको पता नहीं है, तो मतलब कर्मिक रिएक्शन कैसे आएगा। तो मैं जब सुना मेरे साथ, अच्छा ऐसा है क्या, तो मतलब मैंने पिछले जन्म में किसी को देखकर भी अनदेखा करके चला गया रहेगा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं ये कर्मिक रिएक्शन ऐसा है कि उसका सबको हमको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए हमको बहुत ही केयरफुल है। तो इसलिए ये देखो ये लोग इमिडिएटली उसको मार सकते थे, इमिडिएटली मारते थे तो भी उनको कर्म लगता था, क्योंकि राजा जो रूलर है वो एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको डायरेक्टली मारने से, उसको बिना कोई चांस दिए मारने से उनको उसका भी कर्म लगता था, और अगर उसको कुछ समझाएंगे नहीं तो भी कर्म लगता था, क्योंकि इन्होंने उसको उस पोजिशन में बिठाया है, तो वो जो भी गलत कार्य कर रहा है उसका भागी ये लोग भी बनेंगे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा चलो हम इसको, इस राजा को समझाने का प्रयत्न करते हैं, अगर समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो हमारा ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे। ऐसे सोचकर ये सब ऋषि मुनियों सब सोचकर फिर लोग फिर वो लोग जाकर 12वें श्लोक में ऐसा बताया गया है, तद्विवद विद्वद बिर असद्वृत्तो वेण अस्माभिकृतो नृप सांत्वितो यदि नावाचम न ग्रहिष्यति अधर्मकृत लोकधिक्कार संदग्धम दहिष्यमानस्व तेजसा। तो यहां पर बताए, संत सदृश मुनिजनों ने आगे सोचा, निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हमने ही वेना को राज सिंहासन बैठाया है, यदि हम उसे अपनी सलाह मानने हेतु राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हमें भी उनका साथ साथ देंगे, इस प्रकार हमें अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, अभी हम जाकर इसको वेण को उसके गतिविधियों के बारे में बता रहे, तुम अधर्मिक कार्य कर रहे हो ऐसे मत करो, हम समझाएंगे। अगर हमने नहीं समझाया, अगर वो ऐसे ही करता चला गया तो लोग क्या सोचेंगे, जनता सोचेगी कि ये लोग भी, ये ब्राह्मण है, ऋषि मुनि भी इसके भागीदार है, क्योंकि इन्होंने इसको राज सिंहासन पर बिठाया है। तो राजा के साथ साथ हमको भी दुत्कारेंगे ये लोग, तो इसलिए हमको जाके समझाएंगे, अगर ये नहीं समझा तो हम इसको अपने तेज से भस्म कर डालेंगे। तो तेज से मतलब मंत्र से, यहां पर तेज मतलब उनके मंत्र में इतना तेज था, मतलब इतने शुद्ध ब्राह्मणगण उस समय इतने शुद्ध थे कि वो लोग अगर मंत्र उच्चारण करते थे, मंत्र उच्चारण से अग्नि को प्रज्वलित करते थे, मंत्र उच्चारण से एक को मार सकते थे, मंत्र उच्चारण से एक जानवर या पशु को नया जीवन, नया एक सुंदर जीवन दे सकते थे। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मणों के पास शक्ति था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम ऐसे करेंगे। फिर अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये तात्पर्य पढ़ता हूं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक विषयों में भले न हो, किंतु वे जनसामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। तो फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार या राजा को रास्ते पर लाने हेतु कदम उठाने पड़ते हैं। तो साधु पुरुष अभी हम देखेंगे ऐसे ऐसे, अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उनको कभी कभी अगर कोई रहता नहीं तो अपने हाथ पर, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर जो इंद्र है, इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है, ऐसा नहीं ब्रह्मा इंद्र कोई नाम है, एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या पोस्ट है, यहाँ पर हमेशा नए नए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा इंद्र एक पोस्ट है और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन लगता है, बरोबर ना। अगर प्रधानमंत्री है कुछ, उसका कुछ क्वालिफिकेशन है तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बने उसको कुछ, उसका कुछ गुण आया तो मुख्यमंत्री बन सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा और इंद्र कोई पोस्ट है, वो कोई जीवात्मा उस गुण उनको मिल जाता है, उतने क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनको उस पोस्ट पर बिठाया जाता है। अगर कोई रहता नहीं है तो स्वयं भगवान उस पोस्ट को ले लेते हैं, जैसे यज्ञ, भगवान यज्ञ इंद्र के पोस्ट, जब इंद्र पोस्ट लेने के लिए कोई जीवात्मा तैयार नहीं थे, किसी का क्वालिफिकेशन नहीं बना, तो भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में आकर इंद्र का पोस्ट ले लिए। तो उसी प्रकार ये ब्राह्मणों का भी वही, ऋषि मुनियों का, साधुओं का ये जिम्मेदारी है, कोई अगर सही कार्य नहीं कर रहे तो अपने हाथों पर ले लेते हैं और वो कार्य करते हैं। जैसे परशुराम, परशुराम जी कौन थे, एक ब्राह्मण थे, साधु थे, वो परशुराम को मतलब चाकू तलवार अस्त्र लेकर युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, ब्राह्मण थे वो, उनको विद्या ज्ञान तप ये करना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि क्षत्रियों में बहुत ही एक क्रूरता और उनके अंदर बहुत ही द्वेष भावना, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भावना बढ़ गई है, तो उन्होंने सोचा हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ पे ले लिया और उन्होंने क्या किया, 21 बार क्षत्रियों के वंशज को ही मार डाला। साधु थे, ब्राह्मण थे, पर क्यों उन्होंने किया, क्योंकि कोई राइट प्रॉपर क्षत्रिय उस समय नहीं थे कि इन क्षत्रियों को कंट्रोल कर सके, उनको सही रास्ते पर ला सके, तो उन्होंने ये कार्य किया। तो उनका अवतार ही उसलिए हुआ था कि क्षत्रियों को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो इसलिए यहां पर कहा गया साधु पुरुषों को राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक में हाँ मैं आकर शासन करूंगा, मुझे फिर लोग पूजा करेंगे, मेरा फॉलो करेंगे, उनको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको भगवान का भक्ति करना है, भगवान के जो ज्ञान है वो बांटना है, लोगों को देना है और अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, बस इतना ही। पर वो क्यों ये कार्य करते, कभी कभी दूसरे का कार्य, दूसरे वर्णों का कार्य, दूसरे आश्रमों का कार्य वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाना है। तो इसी प्रकार परशुराम ने ऐसा किया, तो वही यहाँ पर बता रहे हो, कुछ राजनीतिक में इच्छा नहीं है पर वो सही रास्ते पर लाने के लिए करते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पूर्व की भांति शक्तिमान नहीं रह गए हैं, वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने के समर्थ रहते थे, मतलब वो जमाने में उतना तेज था कि वो अपने तेज से कंट्रोल कर सकते थे सब चीज को, पर कलयुग में साधुओं में वो शक्ति नहीं है। इसलिए कलयुग में क्या ना ध्यान का मार्ग है, यज्ञ यज्ञ का मार्ग है, ना अर्च विग्रह की पूजा करने का मार्ग है, सिर्फ एक ही मार्ग है, नाम संकीर्तन। तो इसलिए कलयुग में ये साधु पुरुष के पास इतना शक्ति नहीं रहा है। अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुष में ऐसी शक्ति नहीं रही, ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे ऐसा यज्ञ कर सके जिसमें पशुओं को नया जीवन प्रदान करने हेतु उनकी बलि दी जाती थी। तो उस जमाने में कलयुग, उस जमाने में जानवरों को बलि दी जाती थी, किस लिए? तो बलि देकर वो जो कोई भी नए जानवर को या यंग पशुओं को नहीं मारते थे, वो जो बूढ़े पशु होते थे, गोमेद यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, बूढ़े पशुओं का वध करते थे, और वो मंत्र उच्चारण से ऐसे वध करते थे उस जीवात्मा को एक नया शरीर, वो भी ऐसा शरीर जिसमें वो भक्ति कर कर आगे बढ़ सके, ऐसा शरीर मिलता था। तो ऐसे यज्ञ करते, ऐसे ब्राह्मण रहा करते थे। पर अभी आजकल के जमाने में मंत्र उच्चारण भी बरोबर नहीं होता, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करने के करके भागने में होते हैं मंत्र, फटाफट करो करो भागो, हाँ नेक्स्ट बोलेंगे, अभी आइए हमारे इधर थोड़ा यज्ञ करेंगे। वो ऐसे नहीं सोचते, अरे यहाँ पर याना है, यज्ञ करेंगे तो हम किसी के मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं। जैसे एक यज्ञ, एक पंडित को बुलाए थे, आप आइए यहाँ पर थोड़ा यज्ञ करने आ जाइए, यहाँ पर यज्ञ करना है, ऐसे यहाँ पर वासु शांति यज्ञ, वो यज्ञ यज्ञ करना है। तो बोले अरे मेरे पास तो आज 10 यज्ञ करना है, मुझे इधर से उधर जाना है। तो मतलब 10 यज्ञ एक दिन में कैसे होगा? पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब प्रॉपरली अगर यज्ञ करेंगे, एक यज्ञ करने में उसका एनर्जी चला जाएगा, बिकॉज अपना खुद का एनर्जी देना है उस यज्ञ में। ऐसा नहीं है कि मंत्र उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा बोल के निकल गए, वो अपना एनर्जी देते, अपना प्यूरिटी वहां पर एस्टैब्लिश करते, अपना शुद्धता जो है उनके अंदर का जो एनर्जी शुद्धता है वो वहां पर स्थाप, जिससे उस जगह को, वातावरण को पवित्र करते। वो अगर वो नहीं करेंगे, आगे आगे भागेंगे तो कैसे होगा? गणपति जब स्थापना करने जाते, एक ही पंडित एक दिन में 50 गणपति स्थापना कर देते थे, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कैसे पॉसिबल है? तो मतलब ऐसे ऐसा बोला, ऐसे ही मतलब कलयुग में ऐसा हो गया कि चलो भागो, अगला अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए कलयुग में ब्राह्मणों की, शुद्ध ब्राह्मणों की बहुत ही कमी है। पहली बात तो कलयुग में ब्राह्मण है ही नहीं, कलौ शूद्र संभवा बोला गया है, मतलब कलयुग में सब लोग शूद्र लोग ही है, जो भी है हम सब शूद्र है, भले ही ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए रहेंगे लेकिन फिर भी वो शूद्र ही है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। ब्राह्मणा के सिर्फ जन्म से नहीं बोला जाता है, क्वालिफिकेशन से बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हाँ क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके बाद जो है बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक अवरोध के सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स एक समुदाय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग चाहिए, वर्णाश्रम सिस्टम चाहिए जिससे कि पूरा एक समुदाय चल सके, तो क्षत्रिय तो चाहिए। बट अगर कोई क्षत्रिय नहीं है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, जैसे हमने सती के एपिसोड में देखा, दक्ष के एपिसोड में देखा, सती को जब शिवजी को अपमान किया जा रहा था, दक्ष दक्ष उनके खुद के पिताजी, तो सती चाहे तो अपने पिताजी को मार सकती थी, तो उतना शक्ति था, क्योंकि शी इज देवी शक्ति, पर वो नहीं करती, क्योंकि बोलती मैं पिता को कैसे मार सकती हूँ, तो नहीं मारती। तो बोलती है कि मैं कोई अपराधी है होता है तो उसको इधर उधर ही उसका उसको मार देना चाहिए, हाँ या फिर वहां से निकल जाना चाहिए या फिर आत्महत्या करना चाहिए, 3 ऑप्शन दिया गया है शास्त्र में। अगर कोई भगवान का या वैष्णव का आपराधिक अपराध करता है तो 3 ऑप्शन है, एक तो उसको वहीं पर मार डालो, ये क्षत्रिय कर सकता है, या फिर अपने आप को मतलब सुसाइड कर लो, भस्म कर डालो, हाँ या फिर वहां से भाग जाओ। तो सती सोचती है कि ये शरीर तो मुझे कोई उपयोग का नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे पापी से हाँ मिला है, मुझे दक्ष मेरे दो वैष्णव का सम्मान नहीं कर सकता है, तो उससे मुझे ये शरीर में, तो मैं इसको त्याग ही देती हूँ। तो उसने अपने आप को, सती ने अपने आप को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन ब्राह्मण अपने आप को भस्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को भस्म करेगा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, तो इसलिए अपने को भस्म भी नहीं कर सकता है। तो क्या करना चाहिए, कान बंद करके उधर से भाग जाना चाहिए ब्राह्मण को, ठीक है, ये ब्राह्मण के लिए। लेकिन वैष्णवगण को क्या करना चाहिए, यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। By the grace of Lord Chaitanya, by simply chanting this Hare Krishna mantra, general populace can derive all benefits without political implications. तो हम लोग सोचेंगे ये क्यों, ये देश भर में इतना problems हो रहा है, इतने अत्याचार हो रहे हैं, इसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अगर हम क्षत्रिय हैं, अगर हम उसको सुधार सकते हैं, तो क्षत्रिय के भांति हमको जाना है, उसको लड़ना है, उसको शमन करना है, सिर्फ बोलते नहीं रहना है, बोलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्षत्रिय बोलता नहीं है, महाराज परीक्षित सिर्फ बोलते नहीं थे, महाराज परीक्षित उठकर खड़े होते थे, पूरे पूरे ब्रह्मांड में विश्व में घूमते थे वो, और देखते थे कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पर तुरंत जैसे उन्होंने देखा कलि पुरुष एक गाय और एक बैल को अत्याचार कर रहा है, इमिडिएटली उन्होंने उसको पकड़ा और मारने के लिए तैयार हो गए कि हमारे में उतनी शक्ति है तो हम वो कर सकते हैं, तो करना चाहिए, तो क्षत्रिय कर सकता है। अगर हम क्षत्रिय नहीं है तो हमको ये मार्ग अपनाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद एक्चुअली एक जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र, एक कोई तो एक पॉलिटिकल लीडर आते वो बोलते, प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि क्यों ऐसे इतना अधर्म हो रहा है, लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना मारपीट हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, सब क्या, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, आप लोग इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, इतना बड़ा बड़ा ये हॉल बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सोशल प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स बनाने के बदले आप उतना मनी, उतने पैसे को आप हरिनाम संकीर्तन, बड़े पैमाने पर हरिनाम संकीर्तन ऑर्गेनाइज करने के लिए लगाइए, और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको मौका दीजिए, तो देखो क्या होगा, सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, जो भी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कर रहे हैं उनका हृदय चेंज हो जाएगा। प्रभुपाद खुद एक लेटर में भी लिखते हैं, जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में बहुत बड़ा बंगाल में बहुत बड़ा एक पंडाल कार्यक्रम कर रहे थे, तो करते समय कुछ कम्युनिस्ट लोग आ गए और वो वहां पर प्रॉब्लम करने लगे, मारपीट करने लगे, चेयर वेयर उठाकर मारने लगे एक दूसरे को, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत क्या किया, लेक्चर के बीचों बीच हो रहा था, प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली अपने शिष्यों को बोला हरिनाम संकीर्तन चालू करो, जैसे हरिनाम संकीर्तन चालू हुआ सब शांत हो गए, कोई कुछ बोले नहीं, शांत हो गए और फिर चुपचाप इधर उधर सब चले गए। तो प्रभुपाद जी वो एग्जाम्पल देते हैं, ये हरिनाम संकीर्तन जो है सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हमको हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। हम तो कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय होते तो हम इधर नहीं होते, इंडियन मिलिट्री आर्मी में होते, हम क्षत्रिय तो नहीं है, तो हमारा, हम चैतन्य महाप्रभु के फौजी है, तो चैतन्य महाप्रभु लीड कर रहे, हम जब हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं हम नहीं हरिनाम संकीर्तन कर रहे, हरिनाम संकीर्तन जब करते हैं वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आकर वहां पर लीड करते हैं उस संकीर्तन को, तब जब वो उनको लीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कृपा कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत रसाम सभक्ति श्रियम, वो आए हैं सबको हरे कृष्ण मतलब कृष्ण प्रेम देने के लिए, वो भी कौन सा प्रेम, वृंदावन सॉरी द्वारका या मथुरा का कृष्ण का प्रेम नहीं, वृंदावन का राधा कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, इतने कृपालु भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य चरितामृत में सातवें स्कंद में पंचतत्व के बारे में जब बताते हैं, वहां पर बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र लेने से हमको बेनिफिट मिलता है, नहीं नहीं पर बहुत समय के बाद, बहुत कालांतर के बाद टाइम लगेगा, और उसमें भी कंडीशन से सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब धर्म त्याग करो मेरे शरण में आओ तब मैं बेनिफिट दूंगा, और उसमें भी 10 ऑफेंसेस है, 10 अपराध जो हम लोग सुबह चैंट करते, ये अपराध नहीं करोगे तो हरे कृष्ण महामंत्र का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से कोई मतलब उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है, ये 10 नामों का अपराध का नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं है, सिर्फ चैतन्य नित्यानंद बोलिए, ऐसा भगवान का नाम लेने से बस सब अपराध एक ही क्षण में, जितने भी अपराध किए, जितने भी कर्म हमारे पास इकट्ठे हुए, सब नाश हो जाएगा और हरे कृष्ण महामंत्र का इफेक्ट इमिडिएटली आ जाएगा तुरंत। ऐसे पंचतत्व के महत्व बताया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो आए हमको हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, ये हरिनाम आप देखिए चैतन्य पॉलिटिकल, हम लोग सोच रहे होंगे कि अरे अभी कितना पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम उधर ये कर रहा है, उधर वो कर रहा है, ऐसा चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, मुस्लिम लोग का राज्य था, है कि नहीं? सब जगह मुस्लिम लोग थे, इवन मायापुर में भी मुस्लिम लोग थे। राजा वो कौन था? खान, क्या था उसका नाम, काजी ना, चांद खाजी था। तो ये मुस्लिम लोग इतने मतलब क्रूर थे कि महासंकीर्तन होता तो मृदंग तोड़ देते थे, ऐसे थे वो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बोले नहीं, चलो सब लोग चाकू तलवार ले लो, जाके युद्ध करते तो क्या होता, युद्ध करते तो ये लोग सब मारे जाते, वो लोग गोले मतलब बारूद लेके डालते, सब हजारों की संख्या में मारे जाते। चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल उपाय, चलो सब लोग निकलो मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए। ऐसा हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु ने निकाला कि चांद काजी कुछ कर ही नहीं पाया, शांत बैठ गया, जाकर रूम के अंदर जाकर अपने सीक्रेट चेंबर के अंदर जाके चुपके बैठ गया हो, बोला क्या चल रहा है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ऐसे ही लिख रहे हैं इसमर, इवन प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया कि हमको क्या करना चाहिए। और ये हरिनाम संकीर्तन जब लेते हैं तो वातावरण शुद्ध, आदमी का हृदय चेंज होता है, हो जाता है। किसी को पता भी नहीं रहेगा कि कैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो जाता है। हमने भी देखा है बहुत बार, मैंने हम लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए सब बाहर जाते थे तो एक ऐसा मतलब पूरा ड्रंकर्ड आएगा, वो पूरा पीकर आएगा, उसको भगवान का नाम भी नहीं लेगा, लेकिन जस्ट सुन रहे हो, सुनते हो, डांस करना चालू हो जाता है। और बोलेगा पहले, अरे ये क्या, पहले हम जब हरिनाम संकीर्तन के जाते थे इधर से, तो गांव में तो बहुत लोग होते शाम के टाइम में दारू वारू पीकर आते, तो हम जाते तो ए कौन आया, चलो इधर से निकलो, ये हरे कृष्णा, क्या हरे कृष्णा कृष्णा, जाओ जाओ, ऐसे बोलते थे। लेकिन जैसे हम हरे कृष्ण कीर्तन चालू करते थे और बच्चे लोग सब डांस करना चालू कर देते, तो वो भी आके नाचना चालू कर देता था। कैसे, पहले तो नहीं बोला, पहले जिगलो बोला, लेकिन कैसे चालू हो गया उसका, तो यही हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि हमको हरिनाम, हमारे पास ये ब्राह्मणों की तरह शक्ति नहीं है कि हमने यहाँ बैठे बैठे हुम करके हग्गे में डाला, उधर सब आतंकवादी, सब ये वो जो भी अधार्मिक लोग है मर गए, ऐसे कभी होने वाला नहीं है, हमारे पास उतना शक्ति नहीं है। तो इसलिए हमारे पास एक ही शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु का शरण लो, नित्यानंद प्रभु का शरण लो, जोर से उनका नाम चैतन्य नित्यानंदा, नाम लेते हुए उनको बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम सोच रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र से सिर्फ यही होगा, क्या वो लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत मैंने सुना है, बहुत बार महाराज के मुख से भी सुना है, बहुत बार अपने भक्तों से सुना है, और एक बार पढ़ा भी है। लेकिन इस बार जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तब स्टार्टिंग में चैतन्य तत्व के बारे में पहले चार अध्याय में चैतन्य तत्व के बारे में बताया, तो इतना बड़ा एक स्ट्राइकिंग मैसेज मिला मेरे को कि चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन से सिर्फ हमको मतलब कलयुग का धर्म स्थापना करने के लिए आए, वैसे नहीं है। ही हैज कम टू गिवन अस द मोस्ट सीक्रेट विच इज वेरी बहुत ही इनएक्सेसिबल है, दैट इज वृंदावन का राधा, स्पेसिफिकली वृंदावन का राधा कृष्ण प्रेम। और वो भी कैसे, वो वृंदावन का राधा कृष्ण प्रेम वो देने के लिए आए, वो प्रेम अगर हमको मिल गया देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल, हमारा जीवन सफल हो गया। तो हम सोचेंगे अरे ठीक है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, बट एवरी टाइम जब भी हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय के सब प्रकार के कलमश को, अनर्थों को क्लीन करते हैं और उस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव होने के लिए वो रेडी करते हैं। जैसे अगर कोई हमारे घर पर गेस्ट आने वाला है, तो गेस्ट आने के लिए हम सब रेडी करते हैं ना, सब जगह पे रखते हैं, साफ करते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस अगरबत्ती ऐसे कुछ रखते हैं ताकि वो आएगा तो अच्छा लगे। तो उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं तो इमीडिएटली वो हमारे हृदय पर आकर सब क्लियर कर देते हैं, ऐसे सुगंधित वातावरण बना देते हैं ताकि कृष्ण राधा कृष्ण हमारे हृदय पर बैठे और हमको उस प्रेम का आस्वादन, उस जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका टेस्ट हमको देंगे। और एक बार वो टेस्ट लग गया फिर वो बंदा कभी कृष्ण भक्ति से पीछे नहीं जाएगा, बोलेगा चलो और चलने दो, और आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। वो चस्का लगने का जरूरी है। जब तक हम सुखड़ी खा रहे हैं सुखड़ी सुखड़ी खाते रहेंगे, सब इसके पहले कोई मीठा मीठा चीज खाया ही नहीं है, सुखड़ी या यहाँ पर जो शंकरपाली बांटते वो खा शंकरपाला खाएंगे तो हमको लगेगा यार बहुत मीठा है, अच्छा है अच्छा है, मजा आएगा। लेकिन एक बार किसी ने रसगुल्ला या रसमलाई चख लिया, संदेश चख लिया, बोलेगा ये क्या है, ये तो फीका है उसके सामने। तो अभी हम सिर्फ ये यहाँ के भौतिक जगों भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं तो हमको लग रहा है ये अच्छा है चलो। लेकिन एक बार उस कृष्ण प्रेम का रस जो भगवान ने हमारे हृदय पर चैतन्य महाप्रभु कृपा से अगर हमको उस कृष्ण प्रेम का रस हमने वो आस्वादन कर लिया एक बार, बस फिर हम बोलेंगे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में एक ही चाहिए, ऐसे बोलकर हम उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको इस लेसन इस एपिसोड से इस थीम से ऐसे बताया गया है कि हाँ हमें कैसे सावधान रहना है कि इस भौतिक जगत में बहुत बहुत कुछ होता रहेगा तो हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम इस उस कर्म के चक्कर में हम नहीं फंसे। तो ये कर्म के चक्कर में नहीं फंसना है और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इस दुनिया में उससे हमको अलग रहना है। तो ये सब के लिए एक ही उपाय है, हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने हमको हरिनाम संकीर्तन दिया है तो हम सबको, और हमारे पास इतना अहोभाग्य है कि हर दिन सुबह यहाँ पर 7:15 बजे से नहीं, 7:25 से लेके 7:50 तक हरिनाम संकीर्तन होता है। तो अगर इसमें हम अगर भाग लेंगे तो हरिनाम संकीर्तन ऐसा नहीं है कि क्या ये 20-25 मिनट में इफेक्ट आ जाएगा, एक मंत्र सुनने से भी हमारे हृदय में इफेक्ट आ जाएगा हरिनाम संकीर्तन में। तो इसलिए हमको हमारा भाग्य है कि हमको ये हरिनाम संकीर्तन करने का सुनने का भाग्य मिला है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे हम करेंगे, हफ्ते में एक बार करते थे, लेकिन भगवान की कृपा से गौरंग प्रभु की कृपा से यहाँ पर एवरीडे हरिनाम चालू हो गया है। तो इसलिए हम हरिनाम संकीर्तन करते रहेंगे, ऐसे ही करते करते चैतन्य महा कृपा से हमारे हृदय शुद्ध होकर एक दिन हमें भी उस राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करने का मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हुए यहाँ पर इस कथा का विराम करते हैं। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। हिताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो बताया वृंदावन के राधा कृष्ण प्रेम, तो मतलब इस क्या है एक्चुअली?
जो राधा रानी है वृंदावन का जो प्रेम है इट इज अनकंडीशनल ना। सो जो है कृष्णा का मतलब कृष्णा के तो प्रेम बहुत लोग करते हैं, मथुरा में करते हैं, वृंदावन में, द्वारका में करते हैं, पर वो ऐश्वर्यपूर्ण प्रेम है। हाँ वो भगवान को भगवान जैसा देखते हैं, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट भक्ति कहाँ पर होता है? वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में कोई डिमांड नहीं करता है, सब जगह पर कृष्णा एज एन ऑर्डर सप्लायर। मतलब हम भगवान से मते भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, तो भगवान ऐसे ऑर्डर सप्लायर रह रहकर वो पोजिशन में पक गए हो। बोले बहुत हो गया यार, मेरे से सब लोग मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं, और मुझे भी कुछ दो। तो वो देने वाले वृंदावन वासी है, और उसमें सबसे ज्यादा देने वाली है राधा रानी कृष्णा को। इसीलिए भगवान स्वयं सोचते अरे ये क्या प्रेम है जो राधा रानी मुझे दे रही है, मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, और उसको क्या ऐसा आनंद मिल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे बताया गया कि राधा कृष्ण का प्रेम जैसे राधा रानी कृष्ण को संतुष्ट करती है कृष्ण को आनंद बढ़ता है, जैसे कृष्ण का आनंद बढ़ता है राधा रानी का आनंद बढ़ता है, और कृष्ण के प्रति सेवा उनका भाव और बढ़ता है, तो ये और बढ़ता है, ऐसे बढ़ते जाता है। मतलब देर इज नो लिमिट, कॉम्पिटिशन कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। तो कृष्ण सोच रहे मैं कैसे, तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं ना गोपियों को मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता, स्पेशली राधा रानी के पति बोलते हैं मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ, तुम जैसे प्रेम करती हो मैं इसका आदान प्रदान। कैसे भगवान क्या बोलते हैं? योग क्षेमम वहाम्य हम। लेकिन भगवान गोपियों के लिए बोलते हैं मैं मेरा प्रॉमिस भी मेरा फेल हो गया इसके सामने, योगक्षेम मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना ऊंचा है कि मैं उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए भगवान का ये जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, दैट इज टॉप मोस्ट। तो वो प्रेम हमको देने के लिए आए, मतलब इसमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, वी वॉन्ट टू गिव। और कृष्णा इज वेरी ईगरली वेटिंग, हाँ मुझे ऑर्डर करो, हाँ रथ चलाओ, हाँ रथ चला नहीं रहे, चप्पल लेके आओ, चप्पल लेके आ जाएंगे। तो ऐसे भगवान का ऐसा एक भाव है, भगवान वॉन्ट्स टू बी अ सर्वेंट, वी वॉन्ट्स टू बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो देखो इसमें कॉम्पिटिशन चालू है, तो ये ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन है। तो इस कॉम्पिटिशन में भगवान हमारा दास बनना चाहते हैं, तो उसमें भगवान मतलब भक्त के कंट्रोल में आना चाहते हैं। राधर हम भगवान को मतलब हम भगवान के कंट्रोल में आने से अच्छा भगवान भक्त के कंट्रोल में आना चाहते, तो वह है राधा कृष्ण, टॉप मोस्ट राधा कृष्ण प्रेम, जिसमें राधा मतलब भगवान अगर राधा रानी नहीं है तो वो बहुत ऐसे टेंशन में आ जाते हो, अरे किधर है, एक एक सेकंड के लिए भी राधा नहीं दिखते, वो किधर गई किधर गई, ही बिकम्स वेरी मोरोस, सोचते किधर गई क्या हो गया, ढूंढते रहते हो। राधा रानी भेजे कृष्ण, अगर रासलीला में जैसे वो भगवान कृष्ण गायब हो गए तो वो मतलब ढूंढने लगती है वो किधर है कृष्ण किधर है कृष्ण। तो इस प्रकार का ये जो प्रेम है ये सिर्फ वृंदावन में देखने मिलता है, और अभी भी हम जब वृंदावन में जाते हैं हमने देखा है ये राधा कृष्ण का प्रेम। जब वृंदावन में अभी हम गए थे हाल ही में वृंदावन यात्रा में, तो बरसाना में रुके थे, तो वहाँ पर ऐसा प्रेम मतलब इनकम्पेरेबल, इट इज बहुत ही अलग है। वहाँ पे वो लोग, हम इधर गए थे मान मंदिर में, तो वहाँ पे पुजारी थे, तो पुजारी हमको लेके गए, तो वो बेचारे राधानाथ महाराज को जानते थे, तो उन्होंने बोला वो राधानाथ महाराज के शिष्य आइए आइए, तो उन्होंने लेके गए पीछे एक अंदर गुफा है जहाँ पर एक्चुअली जीव गोस्वामी ने राधा रानी का छवि बनाया था एक पत्थर से, जिसमें मान मंदिर राधा रानी कृष्णा से रूट कर बेटी है, वैसा एक छवि पत्थर में बनाया गया था। तो वो पहले पूजा होता था वहाँ पर, लेकिन जब औरंगजेब ने अटैक किया था उस समय तो वो भगवान डर गए थे और उसको एक नीचे गुफा बनाकर वहाँ पर छुपा गया था, तो वो पत्थर अभी भी है। तो वो दिखाने के लिए हमको लेके गए, और उसी गुफा के अंदर वो बोले कि यहाँ पर तीन महात्माओं ने तप किया है बहुत महीने महीने महीने, कौन कौन, एक रमेश बाबा, एक राधानाथ महाराज और एक कोई तो बाबा जी का नाम लिया, तीन लोगों ने वहाँ पर तप किया है, तो बहुत ही पोटेंट प्लेस है बोले। तो वहाँ पर आप देखते हैं हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद वो बोले हमारी राधा रानी हमारी बिटिया है राधा रानी हमेशा 5 साल की बच्ची है वो हमारे लिए, तो हम हमेशा राधा रानी को ऐसे ही भाव से सेवा करते हैं। तो हम लोग नीचे देख रहे थे, तो अचानक से हमारा हो गया चलो ऊपर जाते गए, तो बोले नहीं नहीं रुको बैठो बैठो, तो हम बैठ गए। तो बैठ गए तो वो राधा रानी को उन्होंने सुलाया था बेड में, और पहली बात तो वो गुफा के अंदर ज़्यादा जहाँ पर राधा रानी को शिला था वहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे, तोते, ट्रेन, कार, बाइक, एरोप्लेन, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के खिलौने रखे थे, मतलब ये, और उसमें एक प्लास्टिक का खिलौना टूटा हुआ था, तो ये देखो टूट गया है थोड़ा इसको अच्छा से लगाना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा बिटिया के लिए, ऐसा रुका। फिर ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद वो बोले रुको मैं अभी राधा रानी को उतारता हूँ, क्या राधा रानी को संतों का आशीर्वाद चाहिए ना, संतों का आशीर्वाद लेंगे तो उसका अच्छा आरोग्य सब अच्छा रहेगा ना, तो इसलिए आप लोग का आशीर्वाद देना है, तो आप रुको मैं उनको उठाता हूँ, करके हमको बिठाया, राधा रानी को उठाया उन्होंने, राधा रानी बेटी उठो उठो साधु समागम आए उठो उठो उठो। तो हम लोग बैठ के देख रहे थे, प्रेम से उठाया, और राधा रानी के बेड के बाजू में आजकल के बच्चे के बाजू में बेड देखते हैं ना वो टेडी बियर को ऐसे पकड़ के सोते बच्चे, तो ऐसे राधा रानी के बेड के आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के खिलौने, उन्होंने बोला राधा रानी के 1000 से ज़्यादा खिलौने हैं उनके पास, तो इतना सब कुछ उधर रखे। फिर उठाया, फिर उन्होंने दर्शन दिखाया, हमने दर्शन देखा, हाँ साधु का आशीर्वाद ले लिया ना, हाँ चलो चलो बहुत अच्छा है अभी तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ऐसे करके उन्होंने फिर हमको जाने दिया। तो हम निकले, अभी हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमको मालूम है वृंदावन में लोग आकर बच्चे छोटे बच्चे होते क्या बोलते हैं, 1 रुपया दो 1 रुपया दो, क्यों 1 रुपया मांगते हैं वहाँ के बच्चे पता है, उनको कुछ गाड़ी बंगला नहीं बनाना है, उनको 1 रुपया से एक चॉकलेट खरीदना है, मिठाई लेनी है, वो 1 रुपया सिर्फ इतना ही मांगेंगे, 1 रुपया मांगेंगे या मिठाई दे देंगे तो ले। तो हम लोग ने क्या किया, वृंदावन में जाते ही हमने पूरा पैकेट भरकर सब लोगों ने हमारे पॉकेट में चॉकलेट भर लिया था, सब लोगों ने, हम लोग 6 लोग थे, सब लोग ने चॉकलेट भर लिया, रास्ते पे जाते जाते चॉकलेट सबको बच्चे को बांटते बांटते जा रहे थे। तो उधर गए वृंदावन में, बरसाना में, मान मंदिर में गए, सब दर्शन किया करके बाहर निकले हम। जैसे बाहर निकले हमारे पॉकेट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, सिर्फ 5-6 थे, मेरे पॉकेट में 5-6 था, वासुदेव प्रभु के 5-6 था और किसी के पॉकेट में 5-6 था, ऐसे पड़े हुए थे। बाहर निकले, निकल के हम बोले हमारे लिए प्रार्थना करना, तो उन्होंने बोले हाँ जरूर जरूर राधा रानी को बोलेंगे कि राधानाथ महाराज के साधु सब आए थे तो उनका दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, साधु लोग आए तो बहुत अच्छा लगता है राधा रानी को, ऐसे सब बोल बोले। और बोले हमारी बिटिया को ना टॉफी बहुत अच्छा लगता है, देखो टॉफी बहुत अच्छा लगता है, बोला अगर आप कुछ दे सकते हैं तो टॉफी दीजिए। अरे हमने बोला आपको टॉफी चाहिए, ये लो, सब लोगों ने पॉकेट के अंदर आती जितना टॉफी डाल लेके ले लो करके दे दिया उनको। मतलब देखो राधा रानी ने मांग के लिया टॉफी हम लोग से, हमारा तो माइंड में से निकल भी गया था टॉफी हमारे पॉकेट में है, राधा रानी ने मांग के लिया। सो देखो शीज, मतलब आई एम से मैं बताने जा रहा हूँ कि राधा रानी वैसे ऐसे प्रोकेट, कृष्णा भी वैसे ही है, वो जैसे भक्त को हम ये अता माम प्रपद्यंते ताम सत्यव भजाम्यम है ना, तो वही श्लोक, मतलब हम जैसे अप्रोच करते वैसे, हम राधा रानी को बच्चे की तरह देखते तो राधा रानी बच्चे की तरह हमारे पास टॉफी दे दो ऐसे। तो ये राधा कृष्ण वृंदावन का, राधा कृष्ण का प्रेम ये है। तो ये हमको मतलब अभी भी जाएंगे तो ये अनुभव करने मिलता है, और हमारा भाग्य है कि हम वृंदावन में रह रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर रहने के बाद वहाँ पर जाते हैं तो वी रियली अप्रिशिएट हमको क्या मिला है। पहले उधर जाते थे भाग भाग के तो कुछ समझ में नहीं आता, हाँ ये देख लिया, बरसाना देख लिया, मान मंदिर देख लिया, हाँ देख लिया, देख नेक्स्ट, हाँ हो गया, टिक मार्क हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर जाकर उधर जाते तो वैल्यू मालूम पड़ता है। वहाँ पर ऐसे ऐसे साधुओं को देखते हैं, वो लोग कितने सालों से, सालों सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से एक ही सेवा कर रहे और कुछ नहीं, और वो ही सेवा में वो तृप्त है, और उनको क्या है, राधा रानी का सेवा है। क्या है, राधा रानी कौन है, 5 साल की बच्ची है उनके लिए। कृष्ण कौन है, 7 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है, बस उतना ही उनके लिए, और वो भाव से वो सेवा करते। ऐश्वर्यपूर्ण है, ओ राधा कृष्ण, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये है राधा कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे और गुरीश्वर समृद्धि। हरे कृष्ण।